We all have our own share of struggles in our life.
और हमारे जीवन में खुद के हमारे संघर्ष होते हैं.
There are challenges.
और बहुत चुनौतियाँ होती हैं.
There may be very difficult situations.
और कठिन समय भी होते हैं.
There could be persecution.
सताव होते हैं.
Situation where we are treated very unfairly.
और ऐसी परिस्थितियां जहां बहुत ही अनुचित रीति से हमारे साथ व्यवहार किया गया हो.
And various kind of tribulations and difficulties.
और बहुत ऐसे सता और कठिन परिस्थितियों का सामना.
None of us are completely insulated from all those.
और हमारे बीच में ऐसे कोई भी नहीं जो इसका सामना नहीं करते हो.
Jesus himself told, in this world you have tribulations.
यीशु ने आप कहा कि संसार में तुम्हें संकट है.
But I have overcome the world.
लेकिन मैंने इस संसार को जीत लिया है.
So that's what Jesus wants to offer to us.
और यही यीशु मसीह ये प्रस्ताव हमें आज देना चाहता है.
In the midst of all the struggles, battles, we have a promise that we can be overcomers.
और सारे संघर्ष और युद्धों के बीच में हमारे पास एक वायदा है कि हम जयवंत हो सकते हैं.
God doesn't want us to live a defeated life.
और परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें खरा हुआ जीवन जिए.
A situation where our circumstances, everything crushing us.
और ऐसी परिस्थितियां जहां परिस्थितियां हमें दबाती हो.
That is not God's intention.
और ये परमेश्वर का इरादा नहीं है.
On the other hand, all our battles make us more stronger.
लेकिन उसके विपरीत हर एक संघर्ष हमको और मजबूत बनाता है.
And we learn the faithfulness of God in our life.
और हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे जीवन में सीखते हैं.
It gives us opportunity to know how God is strong and sovereign and powerful.
और ये हमें मौका देता है ये जानने की परमेश्वर कितना महान सामर्थ्य है, सब बातों पर नियंत्रण रखता है.
There is a very powerful promise, very encouraging one, which very often I have meditated in my own life.
और मेरे जीवन में ये जो प्रभु का एक वायदा है जिस पर मैंने मनन किया, बहुत ही सामर्थ्य ये वायदा है.
Romans chapter 8:37.
रोमियो उसका 8 उसका 37 वचन.
It reads like this, but in all these things we are overwhelmingly conquered through him who loved us.
परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है.
In another verse as I remember it reads like this, in all this we are more than conquerors through him who loved us.
और दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है.
No, it is not just even conqueror. Being a conqueror itself is something great.
और केवल जयवंत होना उसके बारे में नहीं, वो भी एक महान बात है, जय पाना.
But God's promise is that he can make us even more than a conqueror.
लेकिन प्रभु का वायदा है कि वो हमें जयवंत से भी बढ़कर बना सकता है.
When I read a very simple picture comes to my mind.
और ये जब मैं पढ़ता हूँ एक बहुत एक चित्र मेरे साधारण मेरे मन के सामने आता है.
In schools and all there are running race, say 100 meters or 200 meter running race.
और स्कूल के अंदर 100-200 मीटर की एक दौड़ की स्पर्धा होती है.
So at the end there is a victory line up to where you are supposed to run is people hold like tape or something.
और जहाँ आपकी दौड़ समाप्त होने वाली होती है विजय की एक वहाँ पे एक रेखा होती है.
So those who run and they are not abruptly stopping, they just break that ribbon and go forward.
और जो दौड़ने वाले होते हैं वो जो रिबन होता है उसको तोड़कर आगे निकल जाते हैं वो.
So that is how God wants. It's not just one line and stopping, just breaking through.
और इसी प्रकार परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि वहाँ पर हम जाकर रुक जाए लेकिन उसको पूरी तरह से तोड़कर आगे निकल जाए.
That's something we can desire and aspire, seek in our life to be a more than a conqueror.
और इस चीज की हमारे जीवन में हम चाहत रख सकते, अपेक्षा कर सकते कि हम जीवन से बढ़कर बने.
So some thoughts which I was meditating, I want to show how we can. It's not after all with our own strength or power.
और कुछ मनन करने के बाद मैंने इस चीज को मनन किया कि अपने सामर्थ्य से हम जयवंत नहीं बन सकते.
There may be many things. I just want to share three things which will help us to be more than conqueror.
और तीन बातें आपसे बांटना चाहता हूँ जो हमारी सहायता करेगा जयवंत से बढ़कर होने के लिए.
One is the role of the Holy Spirit working in our life.
सबसे पहला है पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में जो कार्य करने के बारे में.
The Holy Spirit working in us makes us more than a conqueror.
और जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है तब हम जयवंत से बढ़कर बन पाते हैं.
In the same chapter Romans 8 verse 26 we read.
और 8:26 में उसी में लिखा है रोमियो 8:26 में.
In the same way the spirit also helps our weaknesses, for we do not know how to pray as we should, but the spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.
इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है।
So one important thing written there is the spirit helps us in our weaknesses.
बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी, आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है।
Do we think that we have weaknesses in our life?
क्या हम सोचते हमारे जीवन में निर्बलताएं हैं?
Remember, it is Holy Spirit's role to help us in our weaknesses.
याद रखें कि पवित्र आत्मा का कार्य हमारी निर्बलता में सहायता करना है।
So this is an important role of the Holy Spirit now in our life to help us in our weaknesses.
और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य पवित्र आत्मा का हमारी निर्बलता में सहायता करना है।
I remember a time when I was living with a bachelor many 30 years before with a bachelor brother, all believers.
और भाई जब 30 साल पहले जब मैं जवान था और भाइयों के साथ में जब मैं रहता था,
there was a brother who was senior to me, it was difficult for me to adjust live with him.
और एक बड़े भाई थे, उनके साथ रहना थोड़ा मेरे लिए तकलीफ था,
because he was more not like a brother, he was more like a mother.
और वो भाई के समान नहीं था लेकिन एक माता के समान था,
which I found difficult to accept.
और वो मैं ग्रहण नहीं कर पाता था.
So I remember I used to always inside things used to boil we don't physically fight or anything, but inside that discomfort was to adjust.
और मैं बाहर से इस बात को नहीं दिखाता था लेकिन अंदर से उस चीज को हमेशा मैं बहुत ही ऐसे महसूस करता था.
So when one of the brothers came and helped us, I told this, this sense there is some problem between us.
और मैंने कुछ भाइयों से बताया कि ये समस्या है हमारे बीच में.
So I said, brother, I don't have the grace to live with him.
और मैंने कहा मेरे पास वो अनुग्रह नहीं है कि मैं उस भाई के साथ रह सकूं.
Then that elder brother told me, brother Abu, you should not say that. God will give you grace if you are willing to humble yourself. God will definitely give you grace.
और उस भाई ने कहा कि भाई आपको ऐसा नहीं कहना है, अगर आप सच में अपने आप को नम्र करेंगे प्रभु आपको अनुग्रह देगा उस भाई के साथ रहने के लिए.
And that's first time I hearing that if I humble I can receive grace. No situation I can say I don't have grace. I may not have grace, I can receive grace.
और तब मैंने पहली बार सुना कि अगर मैं अपने आप को दीन और नम्र करूं तब मुझे वो अनुग्रह प्राप्त होगा.
So I understood that that changed my life. I realized I don't have grace but I can receive grace if I humble myself.
और उस परिस्थिति ने मुझे एक बहुत ही सिखाया कि मेरे पास वो अनुग्रह नहीं लेकिन जब मैं अपने आप को नम्र करूंगा तब मुझे अनुग्रह प्राप्त होगा.
So that relationship with that motherly brother changed.
माता से प्रेम के भरे जो भाई थे उसने मुझे बदला.
He continued to be like a mother till the time several years we lived.
और जब तक हम साथ में रहे वो माता के समान ही वो रहे मेरे साथ.
But I God gave me grace to accept him as he is and live with a harmonious joyful life.
और प्रभु ने मुझे यह अनुग्रह दिया कि हम साथ में मिलकर एक अच्छा संगति कर सके.
So in the same way we can say that when there is a need for forgiving others we can say that I feel I am not able.
और जब हमारे जीवन में जरूरत होती हो कि हम किसी को क्षमा करें और हम तब नहीं जब कर पाते उस चीज को.
That is perfectly fine, and I have honestly, as in many situations, I found it very difficult to forgive others.
और ये बहुत ही अच्छी बात है इसको ग्रहण कर लेना कि कई बार मेरे जीवन में भी औरों को क्षमा करना कई बार कठिन रहता है.
And God doesn't want us to do forgive with our own strength.
और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने प्रयत्नों के द्वारा औरों को क्षमा करें.
But God can enable us if we are willing.
लेकिन परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है अगर हम इच्छा रखते हैं.
If there is a willingness in us, God will help us.
जब हमारे अंदर एक इच्छा है तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा.
So we cannot say that I am not able, but am I willing?
लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी अंदर योग्यता नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि क्या मैं इच्छा रखता हूँ.
Are we willing to forgive everyone?
क्या मेरी इच्छा है कि मैं हर एक को क्षमा करूं?
Can we say with the boldness and confidence that there is no one under the face of the earth with whom I am not willing to forgive?
और क्या हम ये ढाड़स से कह सकते हैं निडरता के साथ कि इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे मैं क्षमा नहीं करना चाहता?
If there is a willingness but we don't find the strength, God will definitely strengthen us to forgive that person.
अगर हमारे अंदर इच्छा और हम नहीं कर पा रहे तो सच में परमेश्वर हमें वो बल देगा उस कार्य को करने के लिए.
This applies to any area. It can be temptations, it can be discouragement. We think that we are not able, but if we are willing, Holy Spirit to help us in our weaknesses.
और हर एक जीवन के क्षेत्र, चाहे वो निराशा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा उसमें.
So this is something which always we should remember in areas where we find that I am weak, I don't find the strength, but that is the time Holy Spirit can help us. That's what we read in this scripture.
और अभी हम जैसे वचन में पढ़ा कि जब हम कोई किसी क्षेत्र के अंदर निर्बल हम उसको जब एहसास करते हैं तब वो इच्छुक है हमारी सहायता करने के लिए.
And it even says, even in situation where we cannot pray, we don't know what to pray, we don't have the so-called mood to pray.
और जब हमारा जो मूड नहीं होता प्रार्थना करने के लिए ऐसे समय में भी.
So just say that, admit that I am not able to pray.
इसको हम मान ले कि प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ.
You are saying the Holy Spirit will inside will intercede us with the groanings, 2-4 words.
और यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहे भर भर के जो बयान से बढ़कर है विनती करता है.
Even when we are such a tight situation with we cannot even open our mouth and pray, but the Holy Spirit inside can with the deep groanings can pray. Which is too deep for to express in words.
और जब ऐसी कठिन परिस्थिति जहां मुंह खोलकर प्रार्थना तक नहीं कर सकते तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहे भरकर जो बयान से बढ़कर है हमारी अगुवाई करता है.
This indicates how deeply the Holy Spirit will help us, is willing and available to help us.
और ये दर्शाता है कि कितना पवित्र आत्मा उपलब्ध है हमारी सहायता करने के लिए.
This is a beautiful example in 1 Samuel chapter 1. We know that about Hannah. A woman who was persecuted, ill-treated by others.
और पहले समय पहले अध्याय के अंदर एक दृष्टांत है हन्ना के बारे में जो हम जानते कि चारों तरफ लोगों से वो सताई गई थी.
And she was not conceiving, she had no child which she was really longing for. For that reason, others were, humiliating her, putting her down.
और उसे बच्चा नहीं हो रहा था और उसके कारण और लोग उसे नीचा देख रहे थे.
We read that in 1 Samuel chapter 1, just to
pehla Samuel pehla adhyay
13 to 18 those verses.
13 se 18.
And she came to the temple. She was praying in. She was speaking in her heart. Only her lips were moving, but her voice was not heard.
Hanna man hi man keh rahi thi. Uske hoth to hilte the, parantu uska shabd na sun padta tha.
And she was with her pain and with her distress, she was just expressing that, but no voice was coming, but lips were just moving.
और सारे दर्द के साथ वो अपने वहाँ पे प्रार्थना कर रही है, अपने आप को प्रकट कर रही है, लेकिन उसके होठ हिल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रहा है.
The Eli, the priest, mistook her. She thought she's a bad lady. Who has no character. She's a drunken woman. That's what the priest. Thought about her.
और एली ने वहाँ पे समझा कि ये जो स्त्री है वो नशे में है या बहुत ही खराब चरित्र से है.
But I want to say that even elders and Christian leaders like me can misunderstand you.
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगवे होते हैं, जो elders होते हैं, वो भी शायद मेरे जैसे आपको समझ नहीं पाएंगे.
We are all human beings. We may see in the external thing one can form an opinion.
हम लोग एक मानव हैं, हम बाहरी तौर से देख के कई बार हम ओपिनियन को बनाते हैं.
डोंट वरी अबाउट, देयर इज अ गॉड हु सीज आवर हार्ट.
लेकिन इसकी चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर जो हमारे दिल को जानता है.
सो द ईलाई टोल्ड, हाउ लॉन्ग यू मेक योरसेल्फ ड्रंक, पुट अवे योर वाइन फ्रॉम यू. दिस वाज सच अ हार्श वर्ड्स ईलाई, दिस प्रीस्ट वाज टेलिंग हर.
और ये एली याजक ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार ले.
बट हन्ना सेड, नो माय लॉर्ड, आई एम ए वुमन ऑप्रेस्ड इन स्पिरिट. आई हैव ड्रंक नेदर वाइन नॉर स्ट्रांग ड्रिंक. But I have poured out my soul before the Lord.
लेकिन हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं दुखिया हूँ, मैंने न तो दाखमधु पिया है न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा को कही है.
Do not misunderstand me. Do not consider your maid servant as a worthless woman, for I have spoken until now on my own great concern and provocation.
और अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा बहुत ही शोकित होने से कारण कहा है.
So you can understand the depth of one's distress. Not able to pray, not able to tell anyone, not in words, and to certain even others can misunderstand.
और यहाँ पर उसके वो दुख की गहराई को आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अधिक उसके अंदर वो दबाव है, वो किसी और को बता नहीं पा रही वो.
This is an example how Holy Spirit inside can teach us to pray, express our deep concern to God.
और यही एक उदाहरण है कि जैसे पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए भीतर से सिखाता है प्रभु की तरफ.
Eli the priest of course quickly understood that and he said, she encouraged her, go in peace, may the Lord God of Israel grant your petition that you have asked him.
और एली वहां पर समझ गया, उसने कहा, शांति से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे.
And that passage concludes like this in verse 18.
और 18 वचन में वो ऐसे अंत होता है.
So the woman went away and ate, and her face was no longer sad.
और तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास न हुआ.
When you pray, when you open your heart, take the help of the Holy Spirit, express our concern to Him, the result will be like Hannah.
और जब हम दुखी हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके सामने उंडेले, और उसका जो परिणाम होगा हन्ना के समान होगा.
Her face was no longer sad.
और उसका मुंह फिर कभी उदास न हुआ.
This how God wants to help us.
यही परमेश्वर इस तरह से सहायता करना चाहता
है. So may really, brothers and sisters, really take the help of the Holy Spirit when you recognize our own weaknesses.
हम पवित्र आत्मा की सहायता लेके ताकि हम अपनी निर्बलता को जान सके.
This not a way just a theory, it is very practical. Even in the place of our secular work, God can help us in our weaknesses.
और ऐसे ही हमारे कार्य की जगह पर भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकता है.
Paul the apostle told, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me.
और पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ.
Today morning probably, you know, I liked one of the brothers posted in our church group something which Hudson Taylor said.
और हडसन टेलर ने जो कहा है, किसी ने WhatsApp group में लिखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे.
That is God uses men who are weak and feeble enough to lean on Him.
परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो बहुत ही निर्बल है और इतने निर्बल है ताकि वो परमेश्वर पर निर्भर हो सके.
We are weak and feeble, but if we lean on Him, God can use us.
हम बहुत ही निर्बल है, लेकिन अगर हम परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तो वो हमें इस्तेमाल कर सकता है.
Yeah. Second thing what I want to share. So one way how God helps us to be more than a conqueror is by Holy Spirit helping us in our weaknesses.
और एक तरीका जो परमेश्वर हमारी सहायता करता है जयवंत होने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने के द्वारा.
And this applies to every area. It may be some area where you are struggling in sinful habits like pornography or any such thing. But God, Holy Spirit can help us in our weakness if we think we cannot do it on our own.
और ये सहायता जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर है, जहाँ कहीं आप संघर्ष करें पाप के साथ, अश्लीलता के साथ, हर जगह पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकता है.
Second thing is God, we read a verse in Romans 8:28.
और रोमियो 8:28 के अंदर जैसे हम वचन को पढ़ते हैं,
God causes all things to work together for good to those who love God.
हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्ेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता
है. This is an amazing, unspeakably amazing promise of God.
और ये बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ परमेश्वर का एक वायदा है.
God causes all things to work together for good to those who love God.
जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है.
Remember that word use all things.
और यहाँ पे लिखा है कि सब बातें मिलकर.
Not only the good thing the things we think that it is good. That not that alone.
और न केवल अच्छी बातें जो हमें लगती है कि ये बेहतर बातें, उस वही नहीं.
Even the seemingly bad things, evil things, and undesired thing happening, God can cause all those things to work together for our good.
और जो अच्छी बातें नहीं है, जो बुरी बातें हमें लगती, वो सारी बातें मिलकर प्रभु ने इस्तेमाल हमारी भलाई के लिए कर सकता है.
It may be hard for us to take it for granted.
और ये बात ग्रहण करना शायद कठिन हो सकता है.
But we can choose to believe in God when that is true.
लेकिन हम इस पर, हम ये परमेश्वर के सत्य पर विश्वास करें क्योंकि ये सत्य है.
When we understand the heart of God, God's interest in our life, we can understand that God can cause all things to work together for my good.
और जब हम परमेश्वर की इच्छा और उसके हृदय को जान पाएंगे कि सब बातें मिलकर मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न वो कर रहा है.
It is not a promise, of course, for not everyone.
और ये हर एक के लिए वायदा नहीं है.
It is a promise for those who love God.
उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं.
And also for those who called by God.
और उन्हीं के लिए जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं.
So this is an encouragement even to love God.
और ये आपके लिए प्रोत्साहन है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें.
You know, one of the most important commandment is to love God with all our strength, all our heart, with all our soul.
और सबसे बड़ी जो आज्ञा है, सारे मन से, सारे प्राण और बुद्धि से परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो.
If you apply ourselves to love God,
और ये तभी लागू पड़ता है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं.
God's promise is there that He will make And he will ensure that everything will work together for our good.
परमेश्वर का वायदा है किसी भी अपेक्षा के बाद बिना परमेश्वर सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करेगा.
There are many many examples in the Bible and practical testimonies I heard. The bad things one thought happened to me after some day really turned before my good.
से बहुत सारे उदाहरण वचन के अंदर है, मेरे जीवन के अंदर है, जहां हर एक बुरी चीजें जो मेरे जीवन में हुई एक समय के बाद परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया.
Sometimes we would experience so many times some bad thing I thought happened to me, but later I raised God in His sovereignty control, that bad thing turned out to be for my good.
कई बार मेरे जीवन में सोचा कि बहुत ये बुरी चीजें हो गई, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सामर्थ में उसको मेरे भलाई में बदल दिया.
I seen people who have failed. Is failure is a good thing?
मैंने देखा है कि लोग जो निष्फल रहे क्या निष्फल अच्छी चीज़ है?
No one fail, no one thing is a good thing, right? I have seen many many people that failure turned out to be good.
और असफलता अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन मैंने देखा है वो असफलता वो फेलियर भलाई में बदल गया.
You know the example of Joseph, when his brothers threw him, rejected him, and he threw him in the pit, finally pulled out, then they realized they can make some money out of him, pulled out and sold him to the Ishmaelites.
उसा यूसुफ के उदाहरण के बारे में देखते हैं कि जैसे उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, वहां से निकाल कर पैसे कमाने के लिए इश्मालियों को उनको बेच दिया.
So was it a good thing?
क्या इसमें कुछ अच्छाई है?
It's all bad thing. Very difficult to understand the level of intensity of rejection by his own people.
और यहाँ पे एक नकारात्मक वो त्यागा जाना उसकी एक हम बात को देख सकते हैं.
We all know the story. Very know that you digest the depth of God's ways.
हम परमेश्वर के जो कार्य है उसके जो तरीके हैं उसको हम शायद नहीं समझ पाएंगे.
Those people who bought him to came to into Egypt.
और उसको वहाँ से फिर मिस्र में लेकर आए.
And there also so many things happened to him.
और बहुत सारी चीजें वहाँ पर भी यूसुफ के साथ हुई.
And it is there that he made him the second person in the country, like a prime minister.
और वहाँ पर परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री मतलब दूसरा राज्य के अंदर व्यक्ति बनाया.
So God used his brothers, those used his their evil habits of taking money, selling brother and selling money. God used the Ishmaelites to take him, transport into Egypt. Everything God used to fulfill God's purpose in his life.
और परमेश्वर ने अपनी योजना उसके जीवन में पूरा करने के लिए उसके दयारित भाइयों को इश्मालियों को मिस्र तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल सारी चीजों को किया.
So all the bad and hard things that happened to him, God causes all things to work together for good.
और हर एक बुरी और कठिन चीजें जो उसके साथ जीवन में हुई परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया.
And it is not only just to make him great. You understand? I mean, read the end of Genesis chapter 51. God did all for a purpose to preserve. God knew had a plan to bring all the entire Jews to Egypt. And in ahead, God sent Joseph.
और परमेश्वर ने केवल उसे महान बनाने के लिए कार्य नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए किया कि उसको वो पहले भेजा और उसके साथ साथ उस पूरे परिवार को प्रभु ने वहां पे बनाए रखा.
So let us not be discouraged when something bad happens to us now, something negative happens to us. It's not we cannot understand maybe, that's fine. We don't understand now. But let's trust that God can work together that situation for my good.
और अगर ऐसी कोई भी बुरी या कठिन परिस्थिति हम लोग जो समझ नहीं सकते उसमें हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर सब कुछ भलाई में बदल रहा है.
So this is the second way how God helps us to make us more than a conqueror.
और दूसरा तरीका जहां परमेश्वर हमें जीवन से बढ़कर बनने के लिए बनाता है.
By causing all things that are happening to us to turning all those to for our good.
और तब जब परमेश्वर सारी चीजें जो हमारे जीवन में हो रही है उसको भलाई में परिवर्तित करने के द्वारा.
थर्ड थिंग इज
तीसरी बात
बाय गॉड बीइंग ऑलवेज विद अस
और परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहकर.
देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्ड्स हिडन इन इन द सेम चैप्टर रोमन चैप्टर 8:31
और 8:31 के अंदर वचन लिखता है.
ही सेज दैट व्हाट शैल आई से टू ऑल दिस इफ गॉड इज फॉर अस who can be against us.
हम इन विषय के बारे में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है.
God is for us. God is if I am no I am for you who can be against you.
अगर परमेश्वर कहे कि अगर मैं तुम्हारी ओर हूं तो कौन तुम्हारे विरोध में हो सकता है.
Which devil, which human being, which powers, what can be against you? I am with you.
और कौन सा सामर्थ, कौन सा शैतान, कौन सी ताकत, अगर तुम्हारी ओर हूं कौन तुम्हारे विरोध में खड़ा रह सकता है?
This is something which we can meditate. God is on my side. Who can be against me?
इस पर हम मनन करें कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है?
This can give us unspeakable courage and confidence in our struggles.
और ये बहुत ही हमारे संघर्षों के मध्य एक ढाढ़स एक निडरता हमें देगा.
In all our struggles, remember that Lord is on my side.
संघर्षों में हम ये स्मरण रखें कि परमेश्वर मेरी ओर है.
In our struggles and battle, remember this: God is not on the devil's side. God is invariably on our side.
और हर एक संघर्ष और युद्धों के अंदर हम स्मरण रखें कि परमेश्वर शैतान की ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है.
If God is on our side, who can be against us?
और यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
And he explains that if God chose to give His own Son for us, delivered Him up for us, sir, what else? How will he not also freely give us all things?
और आगे कहता है कि उसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, तो वो हमारे लिए सब कुछ क्यों कर न देगा?
So brothers and sisters, let us remember this: God is on our side.
तो भाई और बहनों से स्मरण रखें, परमेश्वर हमारी ओर है.
Ensure that God is on our side.
इस चीज को हम ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारी ओर है.
And remember and meditate that.
और इसको याद रखें और मनन करें.
And remember that. If God is on my side, who can be against me?
और इसको हमेशा याद रखें कि परमेश्वर यदि हमारी ओर है, तो कौन विरोध खड़ा हो सकता है?
In the following way, is speaking about is encouraging. There is no need for receiving a condemnation in our own life.
और किसी भी चीज के अंदर हमें वो दोष नहीं लेना है.
It is Jesus Christ who justifies us.
यीशु मसीह है जो हमें धर्मी ठहराता है.
Don't allow any devil or any human being, pastors or elders, anybody to condemn us.
और किसी को अनुमति नहीं दे किसी शैतान या किसी एल्डर को या पास्टर को कि वो आपको दोषी ठहराए.
Don't receive a spirit of condemnation.
और वो दोषी ठहराने वाली आत्मा को आप ले ना ले.
God is on our side.
परमेश्वर हमारी ओर है.
So in conclusion, I want to say that.
और अंत में ये बात मैं कहना चाहता हूँ.
There are in the same chapter.
उसी अध्याय में.
पॉलुस
कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल या नंगाई, जोखिम या तलवार?
Varying level, varying degree, some of this can God can allow in His sovereignty in our life.
और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में इन्हीं चीजों में से किसकी अनुमति दे सकता है?
But none of these things can separate us from the love of God.
लेकिन ये सारी चीजें हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती.
In this background of intense opposition, struggle is Paul telling this. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us.
और इन सारी पृष्ठभूमि के अंदर परमेश्वर कहता है कि इन सारी बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर है.
And verses 38 and 39 is concluding. I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of Christ, love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी.
So Paul believed that, he was convinced and he proclaimed that.
और पौलुस इस चीज पर विश्वास करता था और उसकी उसका ऐलान उसने किया यहाँ पर.
All these difficulties I am facing, it is not going to separate me from the love of Christ.
और उसने कहा कि ये सारी कठिन परिस्थिति मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती.
But in the midst of all this, God is helping me by all means to make me more than a conqueror.
लेकिन उसमें विश्वास किया कि इन सारी बातों के अंदर परमेश्वर कार्य कर रहा है कि जयवंत से बढ़कर मुझे वो बनाए.
So let's be encouraged, brothers and sisters.
I am प्रोत्साहित हूँ भाई और बहनों.
As I mentioned, I have my own problems.
और मैं जैसे बता दूँ, मेरे खुद के समस्याएं मेरे जीवन में
हैं. Still I am able to laugh and smile.
और फिर भी मैं उस समय मुस्कुरा सकता हूँ.
I am sure many of you are able to burst into laughter and smile. It's not that you have no problems.
और ऐसा नहीं है कि आप हंस नहीं सकते. आपके समस्याओं में आप हंस भी सकते हैं.
We all have our own struggles, battles, our own griefs, sorrows. We have that.
और हमारे खुद के संघर्ष और युद्ध है, कई बार दुख है और दर्द है हमारे जीवनों के अंदर.
But in the midst of this, we are able to smile and laughter because we know that God can make all things work together for our good.
इन सारी चीजों के अंदर हम मुस्कुरा सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर सब कुछ हमारे भलाई में ही परिवर्तित कर रहा है.
Holy Spirit is helping me.
और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है.
And God is on my side.
परमेश्वर मेरी ओर है.
And through all this, I want to be more than a conqueror.
और इन सारी बातों के द्वारा मैं जयवंत से बढ़कर बन रहा हूँ.
These are opportunity to be a conqueror.
और ये सारे मौके हैं जयवंत बनने के लिए.
May God help us.
प्रभु हमारी सहायता करें.
One thing which encouraged me last week.
और पिछले सप्ताह जो एक चीज मुझे प्रोत्साहित किया
इट्स फ्रॉम ज़करिया,
वो ज़करिया से है,
चैप्टर 4 वर्स 7,
चार उसका सात.
इट सेज हियर दैट हु आर यू ओ ग्रेट माउंटेन बिफोर ज़रुबाबेल, यू शैल बिकम ए प्लेन एंड ही शैल पुट फोर्थ द हेडस्टोन देयरऑफ विद शाउटिंग्स क्राइंग ग्रेस ग्रेस अनटू इट.
वहाँ लिखा है कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है, ज़रुबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह.
द बैकग्राउंड ऑफ दिस इज द पीपल ऑफ इसराइल वेर कैप्टिव्स इन द लैंड ऑफ बैबलोन.
और पृष्ठभूमि यहाँ की यह है कि इसराइली जो है वो बैबिल के राज्य के अंदर बंदी बनाए हुए थे.
एंड वी नो दैट द एनिमी हैड कैप्चर्ड द place of Israel and the Jerusalem was captured and the temple was torn down, all the walls were destroyed. That is the background of this thing.
वहाँ पर हम देखते हैं कि शत्रु ने है जो यरूशलेम है और इसराइल सारे राज्य को उसके दीवारों को मंदिर को सब कुछ कब्जा कर लिया है.
And everything was destroyed and everything was destroyed in Israel and nothing was there and some people, few of them had a burden to build the temple again.
और शत्रु ने वहाँ पर सारी चीजों का नाश कर दिया था, कुछ भी बाकी नहीं रहा था, लेकिन कुछ लोग थे जिनमें यह बोझ था कि वो सारी चीजों को फिर से बनाए.
So this was a big task because there's a destruction of last 70 years destruction was there and something which they, some of these people were not even born at that time and such a lot of destruction was had happened in that place.
और वहाँ पर इतना सारा विनाश हुआ था, वहाँ पर कोई जन्म भी शायद वहाँ पर नहीं हुआ था, लेकिन इतने सारे जन्म विनाश के बाद भी उनके अंदर ये बोझ था.
सो गॉड स्पोक दैट दिस लाइक ए बिग माउंटेन बिफोर यू.
और परमेश्वर ने उनको बताया कि ये शायद एक बड़े पहाड़ के समान आपके सामने होगा.
तो गॉड गिव ए प्रॉमिस दैट दिस इज अ बिग माउंटेन बट इट शैल बिकम ए प्लेन.
प्रभु ने वहाँ पे वायदा दी ये पहाड़ होगा लेकिन ये वहाँ पे पूरी तरह से गिर जाएगा.
एंड यू शैल ब्रिंग फोर्थ द हेडस्टोन दैट इज द मेन स्टोन यू शैल पुट इट द मेन कॉर्नर स्टोन यू शैल पुट इट विद द क्राइंग ऑफ ग्रेस ग्रेस अनटू इट.
और वहीं पर आप एक मुख्य पत्थर रखना पुकारते हुए अनुग्रह अनुग्रह.
दैट इज गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस यू विल बी एबल टू पुट दैट मेन कॉर्नर स्टोन इन दैट टेम्पल.
और वहीं पर वो मंदिर के जगह प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम उस मुख्य पत्थर को रख सकेंगे.
एंड वर्स 9 इट सेज द हैंड्स ऑफ ज़रुबाबेल हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ द हाउस एंड हिज हैंड्स शैल आल्सो फिनिश इट.
और ज़रुबाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा.
सो दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड.
ये प्रभु का वायदा है.
That God has started a good work in our lives and He will complete that work which He has started.
और प्रभु ने एक अच्छा कार्य हमारे जीवन में आरंभ किया और उसे वो जरूर पूर्ण करेगा.
There may be mountains which some struggles which are like mountains which we have been carrying since many many years since many like they have been carrying like that.
और कई सालों से कई समस्या एक पर्वत के समान हम कई सालों से उसको लेकर चल रहे होंगे.
Maybe it's a sin we are struggling with since many years.
और कोई पाप होंगे जिसके साथ हम सामना कर रहे कई सालों से.
But God has given the promise that who are you, O great mountain?
लेकिन प्रभु वायदा देता है कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है.
So we can claim that because Jesus said, if you say to this mountain by faith, be removed and cast into the sea, it will happen.
यीशु ने कहा विश्वास से अगर इस पहाड़ को कहोगे यहाँ से उठकर तू समुद्र में गिर जा, वैसा होगा.
I believe that God will remove the mountains from my life and make it and cast it in the sea.
और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन से पहाड़ों को निकाल कर उसको समुद्र में फेंक देगा.
Praise God for the words God spoke to us.
और प्रभु की स्तुति हो जो वचन प्रभु ने आज बांटे.
It was really encouragement to listen to the word today.
और जो वचन आज हमने सुने बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले वो थे.
I was just thinking about Jesus himself when he was on earth. He was rejected by everyone.
और जब मैं यीशु के बारे में सोच रहा था जब वो पृथ्वी पर था हर एक के बारे में वो तिरस्कार किया गया था.
Even his friends and like even who were close to him and so many people like first they followed him then they left him.
और बहुत सारे लोग उसके मित्र उसके परिवार उसके साथ उसको जो अनुसरण करते थे वो लोग भी उसको छोड़कर चले गए.
But I like the confidence that Jesus had that he knew that God was sovereign.
लेकिन यीशु के अंदर एक हियाव था कि परमेश्वर मेरे साथ में है.
And he knew that whatever happens in his life is ordered by God.
और उसको ये पता था कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर के द्वारा हो रहा है.
He had absolute confidence in his father.
और परमेश्वर पे संपूर्ण पिता के ऊपर उसे भरोसा था.
That is one thing that I need to learn from him, from Jesus.
और ये एक चीज मुझे यीशु से सीखनी है
that I can trust in my father in whatever comes in my life. My father is in control, that thing.
और चाहे कुछ भी मेरे जीवन में आए, ये मैं भरोसा रखूं कि मेरा पिता सब कुछ नियंत्रण में रखता है.
One thing that was coming to my mind is in 2 Corinthians 1:20.
पहला कुरिन्थियों 1:20. दूसरा कुरिन्थियों.
It says here, for as many as are the promises of God, in Him they are yes. Therefore, also through Him is our amen to the glory of God through us.
क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, वे सब उसमें हाँ के साथ है, उसके द्वारा आमीन भी हुई है.
So when I hear a promise of God, when God speaks to me a word, I say my amen to it, even though it may be not be true at this moment in my life.
लेकिन हर एक जो वायदा जब मैं सोचता हूँ, मैं उसमें हाँ और आमेन कहता हूँ, शायद अभी के जीवन में शायद वो वास्तविकता मेरे जीवन में नहीं होगा.
Like sin might be ruling in my life now, but I confess the word of God. It says sin shall not have dominion over my life one day.
शायद अभी मेरे जीवन में पाप मेरे जीवन में राज्य करता हो, लेकिन उस वाक्य को, वचन को मैं कबूल करता हूँ कि पाप की प्रभुता नहीं होगी मेरे जीवन में.
I might not be able to love my wife as Christ loves the church and might be very far from there, but I still confess, Lord, you will make it true in my life.
शायद मैं मेरी पत्नी से उस प्रकार प्रेम नहीं कर सकता जिससे यीशु करता है, लेकिन मैं परमेश्वर से उस वायदे को मांग सकता हूँ.
Many areas may be there where I am defeated and many areas where I have failed, but I still confess the word of God that, Lord, you will make it true in my life.
और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर मैं बार बार गिरा हूँ, असफल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रभु के वचन को वहां पर कन्फेस कर सकता हूँ.
When Abraham didn't have a child, first he tried his own strength and brought Ishmael.
और जब अब्राहम को बेटा नहीं हो रहा था, उसने पहला प्रयत्न किया और उसके बाद वो इश्माइल लेकर आया.
God changed his name and made it Abraham so that he will know that one day he will be the father of many nations.
और तब परमेश्वर ने उसका नाम बदल के अब्राहम रखा, जिसका मतलब वो राष्ट्रों का एक दिन पिता बनेगा.
So whenever he heard his name itself, he knew that yes, one day I will be the father of many nations. I will have a child. He was very sure that God will perform his whatever he has said.
और जब कभी अब्राहम का नाम पुकारा जाता था, उसको पता है कि मैं पिता हूँ और एक दिन परमेश्वर मुझे पिता बनाएगा.
So that's what God wants me to always remember that I need to confess the word of God that God gives me through many situations, like when I hear it or when I read it.
और यही परमेश्वर प्रोत्साहन देना, हर परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के वादे को जब मैं पढ़ता हूँ, उसको मैं ऐलान करूँ.
Because I need to remember that there is another voice always speaking, that condemnation and discouragement voice. So I need to fight that battle and I need to confess the word of God in that place and not allow that thoughts and those voices that speak discouragement, but I need to confess the word of God.
और ऐसे बहुत सारे आवाज होंगे जो मुझे निराश करने वाले, दोषित करने वाले होंगे, लेकिन उस आवाजों के साथ लड़कर मुझे परमेश्वर का जो वचन और आवाज है उसको ऐलान करना है.
Like he will tell you, you are so many years, it has never happened, you have defeated and you are this and that, but I need to confess the word of God in that place.
और बहुत सारे ऐसे आवाज आएंगे कि तेरे साथ ऐसा हुआ, तू ऐसा नहीं कर पाया, वो सारी चीजों को हमको वहां पर प्रभु के वचन को वहां पर कन्फेस करना
है. It's very very important to listen to the word of God continuously in our lives, especially when the voice of the devil speaks. We have to have the word of God in our hearts always.
और जब शैतान उसकी बातें, जो हमारे मन में जो बातें करते हैं, तब प्रभु का वचन होना, उसको बोलना बहुत जरूरी है.
For that, I need the power of the Holy Spirit constantly in my life.
और निरंतर उसके लिए मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए.
I see the lack in my own life and I really need to cry out to God, Lord, fill me with the Holy Spirit.
और मैं अपने जीवन में उसकी कमी देखता हूं और मैं प्रभु को पुकारता हूं कि मुझे सच में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से.
I believe that he will do it in my life.
और मैं विश्वास करता हूं वो ऐसा जरूर करेगा.
थैंक गॉड फॉर व्हाट आई हर्ड टुडे.
और प्रभु का धन्यवाद जो आज मैंने सुना.
इट्स नो लाइक गॉड सेंड सम सिचुएशंस इन लाइफ.
और प्रभु कई बार ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में भेजता है.
दैट नो वी कैन रियली एग्जामिन आवर लाइफ, वी कैन रियली सी हाउ वी आर.
और ताकि हम अपने आप को जांचे कि हम कहां पर है.
लाइक when things are going normal, everything is great, you know, it's so easy to praise God.
aur sab kuch acha chal raha hai, sab kuch normal hai, tabhi prabhu ki stuti karna bahut aasan hai.
you know, like sharing certain things is very easy, you know, like
aur kuch aage aakar baantna vachan se bahut hi aasan hai.
but things are, when things go wrong, you know, like certain things when you are like despise or you are said some wrong things,
aur jab
you it's very hard to, you know, praise God.
और जब परिस्थितियाँ बुरी होती है, कोई कुछ बोल देता है, चीज़ें ठीक नहीं होती, तब उस परिस्थिति में स्तुति करना कठिन है.
सेम थिंग हैपनिंग इन माय लाइफ नाउडेज, यू नो,
और ऐसी कुछ चीजें मेरे जीवन में हुई.
सो इन टाइम्स वेयर यू नो लाइक यू फील लाइक यू आर लेफ्ट अलोन एंड गॉड इज नॉट लुकिंग आफ्टर यू.
और ऐसा समय जहां आपको लगता है कि आप अकेले हो, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है.
एंड यू समटाइम्स यू नो लाइक इवन एट नाइट व्हेन यू स्लीप इन योर ड्रीम्स यू गेट द सेम थिंग.
और आप जब रात को सोते सपने में भी वही चीजें अगर आपको आती है.
व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू फील अगेन यू आर न्यू डे स्टार्टेड एंड यू आर रिजेक्टेड.
और जब सुबह उठते तो आपको लगता है नया दिन शुरुआत होगा, वही बातें.
सो लाइक इन दिस टाइम आई कैन रियली नो लाइक यू नो लाइक व्हेन आई वाज इन गुड टाइम्स इट वाज इजी टू प्रेज बट व्हेन आई गॉट बैड टाइम्स इट्स सो हार्ड टू प्रेज.
और ऐसे समय में मालूम पड़ता है कि अच्छे समय में स्तुति कर सकता हूँ लेकिन बुरे समय में नहीं हो पाता.
कैन रियली सी लाइक व्हेन आई कंपेयर माय लाइफ आई कैन से आई एम अ बिग हिपोक्रेट.
और जब मैं अपने जीवन की तुलना करता हूँ तब मैं देखता हूँ कि मैं एक पाखंड से भरा हुआ व्यक्ति हूँ.
सो लाइक व्हेन थिंग्स आर गुड एंड आई एम रियली हैप्पी.
और जब चीजें अच्छी हैं तब मैं बहुत ही खुश हूँ.
यू नो लाइक बाइबल सेज इन रेवलेशन रीड नो गॉड डिसिप्लिन्स द चिल्ड्रन हुम ही लव्स.
और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है.
सो लाइक गॉड वांट्स टू डिसिप्लिन आवर लाइव्स आल्सो.
प्रभु हमारे जीवन को ताड़ना अनुशासित करना चाहता है.
एंड The disciplining process is little hard.
और वो अनुशासित करने की जो प्रक्रिया है कठिन है.
But the result when it comes, you know, like it's really good.
लेकिन उसका परिणाम जब आता है बहुत ही अच्छा होता है.
Like you can see a student who was appearing for 10th standard or 12th standard or a degree, you know, that final year is the full year he slogs around, you know, he's studying, spends late nights, you know, like time of things, you know, going to teachers, asking his questions. But when the result comes, you know, like He's passed, he's got first class or whatever it is. And that is the moment his happiness is there.
और जैसे कि एक विद्यार्थी होता है 10वीं 12वीं कॉलेज की परीक्षा में पूरा साल वो मेहनत करता है, यहाँ वहाँ भागता है, बहुत रात तक मेहनत करता है, देर तक. और जब वो परिणाम आता है उसके जीवन उसके मुख पर वो मुस्कुराहट होती है.
God also sends the situations that we can slog in this area, can we really we can know what we are, and He can change our lives.
और प्रभु इसलिए परिस्थिति को भेजता है कि हम जाने हम कहाँ हैं और हमें वो बदल सके.
There was one verse in 2 Corinthians 12.
दूसरा कुरिन्थियों 12 में एक वचन है.
Depression was God is verse again. God speaking to me from this verse. And verse 9.
12:9.
I'll read the ERV version. It says, "But the Lord said, 'My grace is all you need. Only when you are weak can everything be done completely by my power.'"
पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है.
सो यू नो लाइक व्हेन आई एम कंप्लीटली वीक व्हेन आई हैव कम टू अ प्लेस व्हेन आई एम टोटली क्रश्ड एंड ब्रोकन देन गॉड कैन स्टार्ट डूइंग हिज वर्क. यू नो हिज पावर कैन बी सीन इन माय लाइफ.
और जब मैं पूरी तरह से निर्बल बन जाता हूँ, पूरी तरह से टूट जाता हूँ, तब मैं परमेश्वर के कार्य उसकी सामर्थ्य को कार्य करते हुए देख पाता हूँ.
यू नो लाइक आई समटाइम्स फील यू नो लाइक व्हेन आई प्रे और व्हेन आई यू नो लाइक say something but things like great things can be spoken, great words can be spoken, like you can say humility, faith, you know, overcoming. But the thing is when the work is done, that crushing time is there, then you know what humility is, what faith is, you know, and what overcoming is.
और जब हम प्रार्थना में अच्छे अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, विश्वास को जीवन से बढ़कर करना, नम्रता, लेकिन जब हम सच में उस परिस्थिति में कुचले जाते हैं तब उन शब्द कैसे वो होते हैं.
दैट फ्लैश लाइफ इज द सेल्फ लाइफ इज सो एडमेंट नो वॉन्ट डजेंट वॉन्ट टू गिव इन यू नो डजेंट वॉन्ट टू से लाइक आई एम रेडी टू बी क्रश्ड.
और शारीरिक जीवन जो खुद का जीवन वो बड़ी आसानी से अपने आप को कुचलने नहीं देता है.
बट द स्पिरिट ऑफ गॉड सेज नो लाइक इफ वी गेट क्रश्ड नाउ द फ्रूट्स विल बी रियली नाइस.
और जब पवित्र जब उसका आत्मा है जब हम कुचले जाते तभी हम उसके लिए अच्छे फल ला सकते हैं.
सो ना really pray that God will give us a grace, you know, that thing is not to grumble and complain on the areas when we are going to rough times.
और कठिन परिस्थिति में हम जब कुड़कुड़ाए नहीं, हम शिकायत न करें.
That trust, you know, like what everything like Abu saying Romans 8:28, you know, whatever things he does for our good.
और हम भरोसा रखें जैसे ब्रदर अबू ने बताया कि जो भी वो करेगा हमारी भलाई में ही वो बदलेगा.
So, I know, I can, now I can say, you know, it's really hard.
मैं भी कह सकता हूँ लेकिन ये कठिन है इस पर.
But God, you know, He is a sovereign God. He can give me grace, you know. God says He opposes the pride but gives grace to the humble.
लेकिन परमेश्वर है वो हमें सामर्थ देगा और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा. परमेश्वर दीनों का अनुग्रह देता है और घमंडियों को वह सामना करता है.
If you read the later part, like the same verse, where Paul says, "So I'll gladly boast about my weaknesses."
और पौलुस कहता है कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ.
Then Christ's power can stay in me.
क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में रह सके.
He says, "Yes, I am glad to have weaknesses if they are for Christ."
हाँ, मेरे जीवन में निर्बलता है, मैं उससे खुश हूँ ताकि वो मसीह के लिए हो सके.
I am glad to be insulted and have hard times.
और इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, उपद्रव में और संकट से प्रसन्न हूँ.
I am glad when I am persecuted and have problems.
मैं प्रसन्न हूँ जब मैं निंदा में हूँ, मैं निर्बलता में हूँ.
Because it is when I am weak that I am really strong.
क्योंकि इन उपद्रव संकट में जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ.
So I can say, when these situations come, my self-life, my everything has gone down. I'm totally, broken. But one thing is that I'll be happy, Christ is doing a work in me. I'm getting that nature of Christ in me. When people say something, I think, I am quiet, not to rebuke or rebel back.
और ये सारी चीज़ें जब होती है, जब हम पूरी तरह से टूटते हैं, निर्बल बनते हैं, तभी हम परमेश्वर में बलवंत होते हुए परमेश्वर के कार्य को सिद्ध होते हुए देखते हैं.
Where I can really trust and say, and with faith I can say, God, whatever you do for my best.
तब हम पूरी तरह से भरोसा रखते कहेंगे कि प्रभु तू जो भी कर रहा है वो उत्तम ही कर रहा है.
And I believe in you and I submit my life totally to you.
और मैं विश्वास करता हूँ, मैं पूरी तरह से तुझे समर्पण करता हूँ.
Really, I pray that God will help us to have that life, the life in the Spirit and truth.
और प्रभु सच में हमारी सहायता करे कि वो सत्यता में हम वो सत्य को हम जाने. और जब हम अकेले महसूस करते तभी.
If you go to 1 Peter.
पहला पत्रस.
One Peter chapter 5.
पहला पत्रस 5 अध्याय.
If you read from verse 8, chapter 5 verse 8, says, "Control yourself and be careful. The devil is your enemy and he goes around like a roaring lion for someone to attack and eat."
सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गाजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए.
Refuse to follow the devil. Stand strong in your faith.
विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो.
And this part says, you know that your brothers and sisters all over the world are having the same sufferings that you have.
और तुम ये जानते हो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं.
So it is not like singly, I am particularly, is targeted and this is for you only. But there are many people having problems. But it says to have faith. Who brings us, discouragement? Devil brings us discouragement. He wants to come to a place where he can say, I give up. I can't do anything more. That trust and everything is gone and I'm totally discouraged.
और हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं अकेला ही नहीं संसार में जिसके ऊपर निराशा आती है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जो इसमें से जाते हैं. कौन उस निराशा को लेकर आता है? वो शैतान ही है.
So, one thing about just thinking, church, my brothers and sisters, we are all here together. We are here to encourage each other in Christ.
और हम कलीसिया में यहाँ पर हैं, हम भाइयों बहनों में, भाई बहनें जो है, हम परमेश्वर यीशु मसीह में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके.
We all have our own burdens, we have all have our own trials.
और हमारे खुद के कई बोझ है, चिंताएं हैं.
But we have only one goal.
लेकिन हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए.
To love Christ.
हम यीशु से प्यार करें.
And to really live for him, to please him.
और उसके लिए जिए और उसके हम प्रसन्न करें.
May God really have that goal in our life.
और प्रभु हमारी मदद करे इस ध्येय के जीने के लिए.